है, तुम लोग तो प्रौढ़ हो चुकी, नए नए जो आ रही हैं उनको इधर में रुचि नहीं, उनको भी रुचि आए, तुम लोग भी अच्छी तरह से चलो और इन चीजों को हृदय में लो। जगत की मैया हमारा पालन पोषण करती हैं, तो उनको भी कुछ है, उनको निरादर नहीं करना है, किंतु हमारा आराध्य और हम भजन करेंगे कृष्ण का ही। किंतु ये भी याद रखना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा जी की प्रसन्नता नहीं होगी तो नहीं होंगे। कुछ भी मत करो ये समझो ये राधा जी मैं आपकी हूँ, बस इतना ही मन में चिप करो, हे राधा जी आपके बिना हमारा कोई नहीं, आप ही हमारी सर्वस्व हैं। आप प्रसन्न हो जाएंगे तो कृष्ण बिना चुटकी बजाते ही प्रसन्न हो जाएंगे, कोई त्याग वैराग्य की भी अधिक आवश्यकता नहीं है, बस कृष्ण में रुचि हो, कृष्ण में अनुराग हो। थोड़ा सा ये भी रखना होगा, कोई गंदा चीज खाना पीना व्यवहार करना नहीं चाहिए। आजकल बहुत सी चीजें सब चल रही है, इन चीजों से परहेज रखना चाहिए। आज जमाने क्या होता है, हम लोग आर्य ऋषियों की संतान है, आर्य आचरण युक्त जिनका विचार हो वो आर्य है ना? आचरण होना चाहिए, आचरण नहीं होने और संसार के लोग आचरण नहीं करते थे, हमारे यहाँ के लोग आचरण करते थे, भगवान का भजन करते थे, शुद्ध आचार रखते थे, राधा कृष्ण का भजन करते थे, किसी का अहित नहीं करते थे, निंदा नहीं करते थे, दिन रात संसार में व्यस्त नहीं रहते थे। द्रौपदी कुंती अहल्या तारा सीता गोपियां ये सब आदर्श है, इसी आदर्श के अनुसार में चले, नए रंग में मत रंगेगी, ये लड़कियां भी हैं नए रंग में रंग रही हैं, धीरे धीरे बाल कटाना, फैशन में रहना, सदाचार नहीं सीखना, सदाचार सीखो, ये सब ग्रहण करने की चीजें हैं। बनो तो हम लोग द्रौपदी जैसे बनेंगे, सीता जी जैसे बनेंगे, और हमारी प्राचीन संस्कृति की जो नारियां थी वैसे, इन चीजों को शिक्षा करना है। राधा कृष्ण का भजन, उसमें भी राधा जी का अधिक रूप में भजन करना चाहिए, भजन करना कोई कठिन नहीं है, इसमें कहने में क्या लगता है राधा जी का, और सच कुछ में ऐसा होना चाहिए। राधा जी का भजन करने से कृष्ण का भी हो जाएगा और जितना देवता देवी जो कुछ है सब प्रसन्न हो जाए, एक एक को प्रसन्न करने जाओ कोई भी नहीं प्रसन्न होता। इसलिए आप लोग ब्रज की लड़कियां हैं, ब्रज की माताएं हैं, ब्रज की बहनें हैं, एकादशी का व्रत जरूर करेंगी, जन्माष्टमी रामनवमी भी करेंगी, और राधा कृष्ण की एकांतिक पूजा होनी चाहिए, एकांतिक भजन होना चाहिए। यदि और किसी की पूजा करनी भी है तो राधा कृष्ण की पूजा करके उनके प्रसाद से उनको निवेदन कर दो, बस उनको प्रणाम कर दो, ये राधा कृष्ण के चरणों में हमारी मत, ये संक्षेप में इतना ही अभी करो, भगवान के चरणों में प्रेम होगा, संसार का मोह नहीं आएगा, और जाते समय भगवान का स्मरण हो जाएगा और संसार बंधन कट जाएगा।
पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च गासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। हा देविका कुभर गत गदयाद्य वाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवत उद्भटारती अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य गंधर्विके तव गणी गणनी अंग श्यामलिम छटाभिरभित मंदी कृतेंदी वरम जटं जागुरुचि संविदध तंग पट्टंबरस्य बृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदं राधास्कंद निवेशितो जनभुजं ध्यायेन भक्त्या विहीनापराधं चित्तास्य कामादिकर्मणमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिः तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे। चतुर्थ परिच्छेद। कल हम लोग महाप्रभु जी कृष्ण की द्वितीय वांछा के संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं। क्यों चैतन्य महाप्रभु जी आए, कृष्ण की राधा जी की प्रणय महिमा, दूसरा उनकी माधुरी, तो उनकी माधुरियों के संबंध में वो बतलाया। कृष्ण कैसे सुंदर हैं, बंद कर दो, उनका रूप मधुर है, उनका सब कुछ मधुर और सुंदर है, और सबसे अधिक ब्रजवासी लोग इसका आस्वादन करते हैं, उनमें भी गोपियां, उनमें भी श्रीमती राधिका। कृष्ण को ऐसे लालसा हुई जब मैं अपने रूप का ऐसा ही उपभोग कर सकूं, किंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि गोपियों के भाव, राधा जी के भाव उनमें ना आए। उनका जैसा प्रेम, प्रेम से अनुराग, अनुराग से बढ़कर के भाव, भाव से महाभाव, रूढ़ भाव, अधिरूढ़ भाव नहीं आए, ये नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं इच्छा करने पर भी कृष्ण नहीं कर सके, इसलिए राधा जी को, राधा जी का भाव ग्रहण करने की लालसा उत्पन्न, ये दूसरा कारण हुआ। ये दूसरे कारण के अंतर्गत में ये बतला रहे हैं। कल जिसकी मैंने व्याख्या श्लोक की मैंने की थी, गुप्यस तपः किमाचरन् जमद्मुष्म रूपम् लावण्य सार असमोद्धनन्य सिद्धम् दृग्भी पिबन्ति अनुसवा अभिनवम् दुराप एकांत धाम जसस श्रिय ऐश्वर्यस्य। कल मैंने बतलाया मथुरावासी महिलाएं रंगभूमि में कृष्ण को चारुमुष्टि से लड़ते हुए देख करके कहा, इस सभा को अधर्म स्पर्श कर रहा है, इसलिए यहाँ से चला जाना अच्छा है। ओहो, कृष्ण का यह इतना सुंदर रूप जो प्रतिक्षण नया नया होता है, उसको ये गोपियाँ कैसा पान करती हैं। यदि हम जाने जो गोपियों ने पूर्व जन्म में, इस जन्म में कौन सा तप किया था, आचरण किया था, या क्या आचरण किया था, यदि कोई भविष्य वक्ता हो जानने वाला, और तुम लोगों में से सखियों यदि कोई है तो ये बतलाओ, तो हम लोग भी वैसा ही आचरण करके कृष्ण के उस रूप का पान करें। यहाँ पर गोपियों का कहने का ये तात्पर्य मथुरावासी महिलाओं का, गोपियां कृष्ण को देख करके तन्मय हो जाती थीं और उस रूप को देखने के लिए घर बार स्त्री पुत्र लोक लज्जा मान सम्मान सब कुछ को छोड़ दिया। वो उनका ऐसा हो जाता था जो मुग्ध हो जाती थीं, जो शरीर का ज्ञान नहीं रहता था। और हम लोग अभी तो ज्ञान है, विचार कर रही हैं कृष्ण का रूप है कैसा है, ये विचार कर रही हैं। लोग उनको देख रहे हैं ये भी विचार कर रही हैं। अभी शरीर का होश है, मन में भी विचार भी आ रहे हैं जा रहे हैं, किंतु उनका तो ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ भूल भाल करके एकदम तन्मय हो करके मैं हूँ या नहीं हूँ ये भी ज्ञान नहीं। ब्रह्मा जी को अभी संपाद दे रही हैं एक पलक लगने से। तो इसलिए हंत हंत गोपियां महा सुकृति हैं। उन्होंने सुकृति ऐसा कौन सा कर्म किया, तपस्या की, जो गोपियों के अतिरिक्त ऐसा किसी में भाव नहीं आया। यदि पता लग जाए तो हम भी वैसा तपस्या या आचरण करके दान पुण्य करके हम भी ऐसा ही हम लोग हो सके। यदि आप लोगों में से कोई सर्वज्ञ है तो वो बतला सकता है, बतला सकते हैं तो वैसा ही हम करेंगे। और बाकी हमने प्राय मैंने बतलाया जे कैसे स्वयं सिद्ध है उनका रूप, आभूषण के नहीं बिना भी बहुत सुंदर दिखता है, गुरुज लगने पर भी अत्यंत सुंदर दिखता है। अलके उनकी सुंदर सवारी हुए हैं तब तक कहने की बात नहीं, नई सवारी हैं, मुख में ही लटक रही हैं और चलते समय में हिल रही हैं, कुंडल झलक रहे हों, कुंडल ये सोने का नहीं रह करके कनेर फूल का भी लगा दिया या कोई भी फूल का भी बना करके लगा दिया, अत्यंत सुंदर रमणीय मनोहर लगता है। दूसरों के लिए देवताओं के लिए यह संभव नहीं है, देवियों के लिए संभव नहीं है, यहाँ तक कि ब्राह्मणियों के लिए संभव नहीं है, लक्ष्मी जी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, जो गोपियों के लिए है। यहाँ पर हम जो जिस रूप का दर्शन कर रही हैं ये वो रूप नहीं है, है तो वही, क्यों क्यों नहीं रूप है, अभी क्रोधावेश में है, इनको मारने के लिए चेष्टा की जा रही है, तो भी कितने सुंदर, हाथ में वो हाथी का दांत है, खून के छींटे लगे हुए हैं उस पर भी हैं और उनके मुखारविंद में भी है, और कुछ रोष हैं, आंखें जरा थोड़ी सी लाल हो गई हैं, मुख भी थोड़ा सा क्रोध से रोष से भरा पड़ा है, तब इतने सुंदर। और गोपियां उस रूप को दर्शन करती हैं, वह रूप अनन्य सिद्ध है। और ऐश्वर्य वीर्य जस श्री सबका वो एकांत धाम है। एकांत धाम माने क्या, राम नारायण और जितने रूप हैं वो सब से उद्धार लेते हैं, किससे, कृष्ण से, इसलिए वो एकांत धाम है, उसी से सब लोग लेते हैं। यदि उनका यह रूप नहीं होता तो नारायण राम और सब में ये रूप नहीं आता, इसलिए एकांत धाम है। हमने अनन्य सिद्ध लावण्य सार अनुस्वाभिनवम प्रतिक्षण नवीन नवीन होने वाला, इस जगत का कोई भी ऐसा रूप नहीं एक बार देख लिया और जूठा हो गया फिर देखने की लालसा हुई, जब तक नहीं देखा तब तक। और कृष्ण का रूप है प्रतिक्षण नया नया होता जाएगा, किंतु किन के लिए, कंस के लिए, जरासंध के लिए, इनके लिए नहीं, जिनके अंदर में प्रीति है। कृष्णेर अपूर्व तारगल जार श्रवणे मन है टलमल, कृष्ण क्रिया माधुरी अपूर्व, अपूर्व माने आज तक कहीं भी नहीं वैसा हुआ, अपूर्व अपूर्वतार बल, उसका बल भी अपूर्व है कृष्ण की माधुरी का। जिसके श्रवण से मन टलमल हो जाता है। कृष्ण न माधुरी कृष्ण उपजाए लो सम्यक आस्वादित नारे मौने रहत छो। कृष्ण उस अपने रूप को आस्वादन करना चाहते हैं, कभी प्रतिबिंब में देखा, जल में बिंब में देखा, कभी दर्पण में देखा, देखकर कि गोपियों को इतना आनंद मुझे देख करके होता है, कैसी ये रूप की माधुरी है, उनके अंदर में लोभ उत्पन्न क्षुब्ध हो जाते हैं। किंतु सम्यक आस्वादित नारे, कुछ कुछ आस्वादन तो करते हैं किंतु सम्यक नहीं, सम्यक माने सब प्रकार से नहीं, अच्छी तरह से नहीं, जैसे गोपियां, उनकी तो बात क्या, एक छोटी सी बालिका है, कृष्ण गोचारण करके आ रहे हैं या गोचारण को जा रहे हैं, छोटी सी बालिका अभी 5-7 वर्ष की, बस कृष्ण को जैसे तो देखती ही रह गई, ऐसे कृष्ण अपने रूप को देखते रह जाएंगे, उनमें नहीं होगा। एक हिरण कृष्ण के रूप को देख रही, कृष्ण अपने रूप को ऐसा देख सकेंगे, वो भाव नहीं है। इसलिए जिसको सबसे बेसी आनंद जिनको होता है वो राधिका जी को होता है। राधिका जी के हृदय के भाव को यदि मैं ले लूँ तब मैं इसका आस्वादन कर सकता, अन्यथा संभव नहीं। यही तो द्वितीय हेतु जिसके कारण महाप्रभु जी कृष्ण ही महाप्रभु जी के रूप में आए, इसका वर्णन किया। रूप गोचारण करने के लिए कृष्ण जा रहे हैं, गायें काम फिर गायें जमुना और गंगा मिलकर के चल रही हैं, काली गायें सफेद गायें जा रही हैं, और चारों तरफ में सखा बहुत अद्भुत सुंदर सुंदर सखा, और कृष्ण का अपूर्व रूप बरहा पीड़म नटवर अथवा हिरण्य परिधिम, ये सब रूप, और एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, और उस समय में बंसी बजाते हुए किसी की खोज में उनकी आंखें भटक रही हों, लालायित हैं देखने के लिए, उस समय कृष्ण का ये आंखों में निकली हुई जो कटाक्ष भंगी है उसने यदि देखा तो ये उसकी आंखें से फले नहीं तो नहीं, यानी इतना सुंदर में भी नहीं है, इसलिए बतलाया अनुपम उनके समान कोई भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। अब तृतीय गुण अर्थ बतलाया अत्यंत निगूढ़ एई रस रस, ये कभी जो तीसरा बतला रहे हैं अत्यंत गूढ़ भाव है। स्वरूप गोसाई मात्र जाने एकांत, केवल मात्र जानने वाला कौन है इस विश्व ब्रह्मांड में, केवल मात्र स्वरूप दाम ललिता के ललिता जी हैं, स्वरूप गोसाई मात्र जाने वही जानते हैं। इतना निगूढ़ है, पहले तो श्रद्धा निगूढ़ है, लोग नहीं समझ पाते कि श्रद्धा किसको कहते हैं, समझते हमारे भगवान के प्रति तो बहुत श्रद्धा है, जो कनिष्ठ है वो समझता कि मैं मुझको सभी कुछ प्राप्त है, मैं भगवान का पूर्ण रूप से भजन करता हूँ, मतलब अधिकारी क्या समझेगा, और उत्तम अधिकारी अरे मैं तो कुछ भजन नहीं करता, कृष्ण में मुझे प्रेम नहीं है, राधा जी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता, ये सब अनुभूति के ऊपर में है। आज जो नहीं करते बहुत एकदम प्रेम हो गया है, भक्ति हो गई है, कृष्ण को भी देखा, रोज उससे बातचीत होती है, खाक देखा ना पत्थर देखा कुछ भी संबंध नहीं है। एकांत निगूढ़ रसे सिद्धांत, पहले तो भक्ति है, भक्ति जगत में दुर्लभ है, फिर भक्ति रस आदो श्रद्धा से लेकर के भाव तक भाव के समय में उसका थोड़ा सा परिचय, और इसके बाद में दूसरा जन्म हुआ, प्रेम हुआ, तब फिर वो भक्ति रस होगा। उस रस के सिद्धांत को जानना स्वरूप गोस्वामी ही जानते हैं। और क्यों? स्वरूप दामोदर सब समय उनके साथ में रहते हैं, उनके समस्त भावों से परिचित हैं। यदि दूसरा कोई जानता भी है, जेवा कहो अन्य जाने, यदि कुछ जानता, जैसे रूप गोस्वामी जानते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जानते हैं, कैसे जानते हैं, स्वरूप गोस्वामी के संग से, उनकी बातों से सुन करके तब जानते हैं। यदि कहो जो मैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी मैंने लिखा, नहीं, हमने सुना रघुनाथ दास गोस्वामी से, और रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ से, स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी से, इन लोगों ने कहाँ से सुना, महाप्रभु। इसलिए मूल तो महाप्रभु, इसके बाद में स्वरूप दामोदर। इसलिए जो कुछ भी कोई जानता है उन्हीं से, हम लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो स्वरूप दामोदर की कृपा से मूल में वही है। इसलिए स्वरूप, रूप, रघुनाथ इत्यादि आता है। जेवा के हो अन्न जाने, सिहो जाने तहाँ हईते, चैतन्य गोसाई तिहो अत्यंत मर्म जाते। चैतन्य महाप्रभु का मर्म माने क्या, हृदय कहाँ है, ताते, ताते माने स्वरूप दामोदर के हृदय में, वो उनके हृदय में, महाप्रभु के जो भाव हैं वो सब इनके अंदर में। ये संपत्ति है, एकदम मूल खजाना है, यहीं से करेंसी नोट सब छपती है, चलती है, दूसरी जगह नहीं, यही मूल है, टकसाल जिसको कहते हैं। गोपी प्रेम अधिरूढ़ भावना, गोपियों का जो प्रेम है वो अधिरूढ़ भाव, जिसके अंदर में भी श्रद्धा नहीं है, जिनको फुर्सत नहीं है सांसारिक बातों से और सांसारिक मोह माया ममता क्रोध लोभ, और उनको रूढ़ अधिरूढ़ भाव बतलाया जाए तो भैंस के आगे बीन बजावे, मोती लुटा रहे हैं, बंदरों को मोती लुटा रहे हैं, उनसे क्या मतलब है, उनको एक अमरूद अथवा कोई खाने की चीज दे दो, बस वह लपक पड़ेंगे, मोती का कदर नहीं है। ऐसे ही हम लोग ये सब मोती लुटा रहे हैं, कौन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लिया कहाँ से, मूल स्वरूप दामोदर राय रामानंद, रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी इत्यादि से लेकर के ये दे रहे हैं। तो ये कैसी मोती है, हम लिए देख रहे हैं दूसरे लूट रहे हैं, हमारे भाग्य में नहीं आ रही। गोपी प्रेम विशुद्ध निर्मल प्रेम कभी नहीं कहा, ये निर्मल प्रेम है, विशुद्ध प्रेम काम नहीं है, इसी को बता रहे हैं। संसार में सबसे पहले कृष्ण ही महाप्रभु रूप में आकर के इस चीज को प्रकाश किया, ये अभी तीसरे में ये दिखलाएंगे जो अभी प्रकाश करें, इसलिए पहले ही बतला रहे, भूमिका दे रहे हैं, आप लोग भी सावधान हो, अंततः जीवन में होगा नहीं होगा थोड़ा सा समझो इस चीज को, समझने पर हो सकता है कि कोटि कोटि जन्मों के सौभाग्य से थोड़ी सी इसमें रुचि आ जाए, लोग थोड़ा सा आ जाए, इसलिए बतला रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा जी के दो भाव को उन्होंने बतलाया, तीसरे भाव को बतलाने के लिए ये कह रहे हैं, जिस भाव के लिए वो आए हैं वो उसको केवल महाप्रभु कृष्ण ही जानते हैं, किस लिए आए हैं, दो कारण के बाद तीसरा कारण, तीसरा कारण क्या है, राधाया प्रणय महिमा कीदृशः वा अन्यैव वा स्वादो जेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशः, इसके बाद में अस्वादो जेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो आमदीय सौखं चास्य मद अनुभवतः, मद अनुभवतः कीदृशं नहीं मद अनुभवतः कीदृशं सुखम, इसको जानने के लिए हमारा अनुभव करके प्रेम की माधुरी की अनुभव किया कि हमारी माधुरी कैसी है और उसका माधुरी को आस्वादन करके कैसा सुख उनको होता है, जिस सुख में अपने को भूल जाती हैं, संसार को भूल जाती हैं, लोक लज्जा धर्म आर्ज पर सबको भूल जाती हैं, उस सुख के आस्वादन में, वो सुख हमारा अनुभव, मत अनुभवतः, मुझे अनुभव कर, माने मेरे माधुरी को अनुभव कर, राधा जी की प्रणय महिमा को जानकर उसको आस्वादन करके उनको किस जातीय सुख होता है, मुझे आस्वादन करके वो सुख क्या है। अब इसी सुख को बतला रहे हैं, वो सुख क्या है, भक्ति रस। भक्ति रस यही बढ़ करके प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, बस अब यहीं तक के। चैतन्य चरितामृतकार ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको बतलाया है, ये दूसरे मध्य लीला में चैतन्य लीला रत्न सार, रत्नों का भी सार है, स्वरूपेर भंडार तिहो थोइला रघुनाथ कंठे। कृष्ण चैतन्य रत्न सार, स्वरूपेर भंडार तिहो थोइला रघुनाथ कंठे, ताहाँ किछु जे सुनिल ताहाँ यही विवरिल भक्तगण दिल यही भेटे। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य लीला रत्नों का अमृत का सार है और यह सार संपूर्ण रूप में स्वरूप दामोदर के हृदय में भंडार के रूप में है। उन्होंने कुछ इसमें का रघुनाथ जी गोस्वामी के कंठ में कुछ रखा, उन्होंने उनसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो कुछ सुना समझा उनके संग में देखा उन्होंने मेरे निकट वर्णन किया, अनुग्रह करके कृष्णदास को विराज गोस्वामी कह रहे हैं। और मैं आज सहर्ष वह रत्न मैं भक्तों के लिए भेंट दे रहा हूं, यह सब उनका भेंट है भक्तों के लिए। यदि कहो जे रूप गोस्वामी क्या नहीं जानते, राय रामानंद नहीं जानते, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर करीब एक ही हैं, उनका दूसरी बात। तब रूप गोस्वामी यदि जानते हैं तो वो किसे जानते हैं, स्वरूप दामोदर के ही निकट जानते हैं, क्योंकि उनके गण में हैं, ये ललिता जी के गण में स्वरूप दामोदर के ये गण हैं, उनके अनुगत हैं। महाप्रभु जी रूप गोस्वामी भी उनका संग किया, किंतु उनको समझने के लिए स्वरूप दामोदर जी की सहायता लेनी पड़ी। महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर जी रूप गोस्वामी के परीक्षक हैं, परीक्षा लिया ना, कहाँ परीक्षा लिया, वो जो ललित माधव विदग्ध माधव का जो भूमिका ये नंदी मुखी इत्यादि जो श्लोक लिखे थे उसमें उनसे पूछ रहे हैं, और छात्र बहुत तीव्र बुद्धि का वो भी वैसा ही उत्तर दे रहा है, और उत्तर सुन करके स्वरूप दामोदर जी का हृदय एकदम स्फीत हो रहा है आनंद के मारे, और जो सोता है देखेंगे वाह बहुत ही सुंदर, और महाप्रभु आज आनंद की सीमा नहीं उसको सुन करके ने? तो ये भी उनसे ले रहे हैं रूप गोस्वामी भी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी रूप गोस्वामी से तो भेंट नहीं हुई, किंतु उनका भी जो कुछ था संग्रह उन्होंने भी रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया था, तो इनको दोहरा लाभ है, स्वरूप दामोदर का, राय रामानंद जी का, महाप्रभु जी का, और साथ साथ में जो रूप गोस्वामी को शिक्षा दी महाप्रभु जी ने वो रघुनाथ जी को नहीं दी, क्यों, अभी बालक है छोटा सा, ये कुछ समझेगा नहीं, इसलिए नहीं। रूप गोस्वामी को प्रयाग में रस तत्व की शिक्षा दी उनको, नहीं वो तो जो समझ रहे हैं देख रहे हैं स्वरूप दामोदर से, ये तो प्रश्न भी महाप्रभु जी को नहीं कर सकते, और ये महाप्रभु से डायरेक्ट इनकी सब चीजें होती हैं, इसलिए वो सब जो चीजें थी वो सब रघुनाथ दास गोस्वामी को मिली और उन्होंने इनको और उन्हीं रत्न को अब ये हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब भक्तों को उपहार दे रहे हैं। स्वरूप गोसाई मत रूप रघुनाथ जाने जत तहां लिखी नहीं मोर दोष। स्वरूप गोसाई स्वरूप गोसाई मत रूप रघुनाथ जाने जत ता लिखी नहीं तार मोर दोष। स्वरूप गोस्वामी जो विचार उनका है, उनका रस भंडार जो है, वो रूप रघुनाथ जानते हैं, और वो जो जितना जानते हैं उन्होंने मुझको जो स्फूर्ति कराई, कहा सुना, उनके कर्चा श्लोकों में मैंने देखा, मैं इनको लिख रहा हूँ, इसमें मेरा दोष नहीं है। ये दोष की बात करते हैं जो मेरा गुण नहीं है, दोष क्यों कहा, दोष क्यों कहा? लोग कहते हैं कि ये सहजिया है, ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए। राधा कृष्ण की अलौकिक जो लीलाएं हैं निभृत में मिलते हैं, परस्पर आदान प्रेम का जो करते हैं, दान घाटी में जो भाव होते हैं, वो जगत के लोगों के सामने नहीं कहना उचित है, ने? किंतु मैं लिख रहा हूं, इसमें मेरा दोष क्या? उन्होंने हमको कहा और हमने दिया, यदि नहीं मैं देता तो इस संसार से लुप्त हो जाती है रत्न, इसलिए मैंने दिया, इसमें मेरा दोष नहीं है। गुण तो है ही नहीं है, गुण तो उन्हीं लोगों का, किंतु दोष भी हमारा नहीं है जो हमको दोष लगे। ऐसा क्यों चीज जगत में दिया जिससे लोग ऐसे हो जाए, व्यभिचारी हो जाएंगे या और ऐसे हो जाएंगे? संभावना है मिसप्रयोग ना करें, इसका दुरुपयोग ना करें, इसलिए। किंतु यदि लड़के लड़की के सामने में आजकल जैसे कि वो दिखला रहे हैं ना टीवी, और इसमें लड़का एक लड़की के पीछे भाग रहा है, दिखला रहे हैं ना, और जो नहीं दिखलाना चाहिए वो उसको अर्धनग्न अवस्था में दिखलाते हैं, ये उचित नहीं। उससे भी कोटि गुण इसमें ये चीजें हैं जो लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं, किंतु किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो काम क्रोध और माया के मोह से ऊपर उठ गए हैं, उन लोगों के लिए है ये, इसलिए कहते हैं मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ, इसमें मेरा दोष नहीं है। स्वरूप गोसाई मत रूप रघुनाथ जाने जत, जो कुछ जानते हैं उनको मैं लिखी लिख रहा हूँ, इसमें मेरा दोष नहीं है। भाई ये तुमने क्यों लिखा, ये चैतन्य चैतामृत में राधा जी कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं, उनका चुंबन कर रही हैं, क्यों लिखा? ये तो बहुत गंदी बात है जो संसार के लोगों को भी नहीं करना चाहिए, और ये लिख रहे हैं, बतलाओ दूसरों की स्त्रियों को लेकर के रात में राश करे और उनका कपड़ा चुरा करके पेड़ पर चढ़ जाए और उनसे कहे जी आ जाओ प्रणाम करते हुए हमारे पास में आ जाओ, सीधे तन करके खड़े हो करके आ जाओ, ये बतलाओ तो ये सदाचार है? नहीं लिखना चाहिए। किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मचारी होकर के इसको लिखा, नहीं तो जगत से ये चीजें सदा के लिए चली जाती, कोई इसको समझने लायक रहता ही नहीं जगत में, इसलिए हमने लिखा है, इसमें हमारा दोष नहीं है। कोई कहेगा क्यों नहीं लिखा, कहे हमारा दोष क्या, तो मैंने आदेश पालन किया उसको किया, इसी तरह से वो कह रहे हैं। इसलिए विश्वस्त सूत्र से वो अवगत होकर के इन चीजों को दे रहे हैं, निर्भीक होकर के दे रहे हैं, ये नहीं जैसे कौआ ले लेगा कि कोयल ही केवल लेगी, क्यों? वो डर रहे थे, वो डर उनका दूर हो गया, कौआ कभी भी आम की निमौरी वो मंजरी नहीं लेते, वो तो निमौरी खाती है कड़वी कड़ी, और उसी के पेड़ पर उसको बैठना अच्छा लगता है। कहता जी जगत में यदि कोई पेड़ है तो नीम ही है, निरोग रह सकते हैं, किंतु नीम के पत्ते पर कभी भी मधु नहीं लगता, ये भी समझो, वहां नीम के पत्तों से यदि कुछ बरसता भी है मधु के रूप में, वो बहुत कड़वा होता है, रोगों को नाश, पित्त इत्यादि को, ये सब किंतु सुख नहीं देगा, स्वास्थ्य लौटा देगा, माने मोक्ष करा देगा, रस नहीं देगा, प्रेम नहीं देगा, निगुण अत्यंत गोपनीय है, दूसरों के लिए अनाधिकारी लोगों के लिए ये उचित नहीं है, अनाधिकारी लोगों को नहीं देना चाहिए। रस का सिद्धांत, पहले सोचो जो रस की सामग्री क्या है, पहले अनर्थ तो दूर हो, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति ये सब आए, भाव आए, प्रतीक्षा करो, इसमें बहुत कुछ है, अनर्थ कितने प्रकार के हैं ये सब जाए, इसके बाद में तब, और उसके बाद में रस की सामग्री, भाव विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी, फिर कितना प्रोपोर्शन में कैसे कैसे मिलाने से तब ये रिय रस होता है, उसमें भी मधुर रस न? ये अत्यंत गोपनीय है, इससे भी अधिक श्रेष्ठ राधा जी का है। तो वो लोग जो राधिका जी हैं, कृष्ण माधुर्य को आस्वादन करके राधिका को जो सुख होता है, मद अनुभवतः सौख्यम सुख हमारा अनुभव करके, राधा जी को कैसा सुख होता है, वो कैसा है, वो सरस विषय सिद्धांत जो केवल स्वरूप दामोदर जी जानते हैं, अब दूसरा नहीं। गोपी प्रेम ये अद्भुत निराली और गोपनीय चीज है। साधारण स्तर से देखा जाता है, साधारण रूप में काम और प्रेम एक ही रूप में देखा जाता है। हमने अभी कुछ दिन पहले इसी की भूमिका के स्वरूप बतलाया था, काम और प्रीति, काम और प्रीति, सुख और प्रीति। सुख क्या है, अपने इंद्रियों को सुख लगने वाला जो कुछ है वो कहते हैं सुख अथवा काम है। काम होता है मन का, ये है मन की वृत्ति, माई की वृत्ति है, और प्रेम जो वृत्ति है स्वरूप शक्ति की, वो वृत्ति है। अब बतला रहे हैं काम, काम से यानी अपने सुख की इच्छा से ये सुख की उत्पत्ति होती है। काम का कारण क्या है, काम ही कारण है, माने कामना, सुख की कामना, और कार्य क्या है, सुख। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अपनी स्त्री सेवा करती है उससे सुख है, ये तो ठीक है, साली घर में आई उसको देख करके क्यों आनंद होता है, लोगों को क्यों होता है, क्या कारण है, पत्नी से उसका संबंध है, इसको प्यार करने से पत्नी जी प्रसन्न होंगी, है ना। इसी तरह से संसार में जो कुछ परिवार के लिए भी है, माता पिता के लिए, दूसरे बंधु बांधव जितना है, विश्व ब्रह्मांड में जो हम आदर करते हैं किसी को, वो अपने सुख के लिए गाय को खिलाते हैं, गाय के सुख के लिए नहीं, गाय को पेट भरने के लिए नहीं, अपने दूध के लिए, है ना। बेटे को प्यार करते हैं बेटे के सुख के लिए नहीं, बड़ा होने पर हमको देखेगा, हमको पारलौकिक क्रिया भी करेगा और बुढ़ापे में पानी देगा, उसकी बहू आएगी, उसके लड़के नाती जो हमारे होंगे वो भी मेरी सेवा करेंगे, और मरने के बाद में हमको श्राद्ध करके अंतिम संस्कार करके हमको पितृपिंड और दे करके हमको इस देश से उद्धार करें। हम पत्नी को प्यार करते हैं किस लिए, क्यों प्यारी है, सुंदरी है, बड़ी शीलवती है, मेरी सेवा करती है, मेरे से सोने से पहले, हमारे जगने से पहले जग जाती है, सोने के बाद में सेवा करके खिला पिला करके बर्तन मार करके सोई चौका सब करके तब सोती है, और हमारे पहले उठ जाती है, हमारी सेवा में जुट जाती है। कोई सुंदरी भी हो, पति के घर में रहती है, दूसरे से प्यार करे और कोई सेवा नहीं करती है तो प्यारी होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए जो कुछ हम संसार को भी प्रीति करते हैं, विषयों में प्रीति, जहां भी, वो अपने सुख के लिए। ये अपना सुख की वृत्ति किसकी है, मन की। मन कहां से बना, माया की वृत्ति, इसे सब माया से निकला है, इसलिए माइक चीज है ना। किंतु ये जो प्रीति है उसको मैंने बतलाया, प्रीति की तो बात छोड़ दो, कृष्ण की सुख हो ऐसी जो भावना है, कामना है, वासना है, ये भी मन की वृत्ति नहीं है। ये किसकी वृत्ति है? कहे मन ही से तो चिंता की नहीं, मन से चिंता जैसे कि जन्म से ही विषयों के प्रति अपने आप अनुरक्ति हो जाती है, कृष्ण के प्रति ये जो भावना है ये किसी की शिक्षा से होगा? बिना शिक्षा से नहीं होगा। और यही शिक्षा जो है ये स्वरूप शक्ति की, या तो साधु के मुख से आएगा जो कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, न शास्त्रों के पढ़ने से होगा, न सत्संग से होगा, कहीं से होगा, ऐसे ही नहीं होगा। तो ये कहाँ से हुआ? उसके अंदर में ये वृत्ति हुई कहाँ से? उसके अंदर में कहाँ हुई? भजन करते करते उनके अंदर में स्वरूप शक्ति की वृत्ति आई, तब दूसरों को देंगे। इसलिए साधारण एक सेवा करने की जो वासना है, यही जब स्वरूप शक्ति की वृत्ति है तो अनुराग भाव महाभाव, अभी जो अधिरूढ़ की जो बातें कर रहे हैं, ये गोपी गणर प्रेम अधिरूढ़ भाव, ये सब स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। नीचे से ऊपर तक इच्छा करने से ही नहीं हो जाएगी, जब उनकी कृपा होगी तब ऐसी भावना आएगी। अब कृष्ण के माधुर्य को अनुभव हो करके राधा जी को जो सुख होता है, ये किस चीज की वृत्ति है? ये काम नहीं है, ये पहले समझो। दोनों में बहुत अंतर है। लक्षणों में कुछ कुछ थोड़ा सा समता तो है। विषय एवे प्रीति जे अच्छे जे अमार से ही मत प्रीति हो। विषयों में हमारी प्रीति जैसी है ऐसे ही तुम्हारे चरणों में है, किंतु भाई लक्षण एक भी नहीं है दोनों का मिलता, एक नहीं है। इसको आगे बतलाएंगे। एक है शुद्ध हेम और दूसरा है शुद्ध जंग लगा हुआ लोहा, इसको आगे बतलाएंगे। देखो संसारिक सुख हमको प्राप्त हो ये कारण हुआ ना, इसके कारण है वासना। वासना से फिर विवाह हुआ। जिसको विवाह करने की वासना नहीं है उसको विवाह करना है, जिसको नौकरी करने की धन की लालसा ही नहीं है वो नौकरी करेगा? नहीं करेगा। जिसको विद्या लाभ करने की वासना नहीं है एकदम, वो पढ़े लिखेगा? भरत महाराज को कोई सब बड़े बड़े पंडित धुरंधर मिल करके पढ़ा सके? पढ़ने की वासना ही नहीं है। इसी तरह से हमारे सुख की वासना जो है ये संसार में फंसने का काम है, यह हुई माया। राधा जी का जो कृष्ण के प्रति माधुर्य का आस्वादन है, इसका कारण क्या है? इसका कोई कारण नहीं। जिसका कारण होता है वो ध्वंस चीज हो जाती है। जिस चीज का जन्म है, हमारे जन्म का कारण क्या है? कृष्ण को भूल जाना। राधा जी का जो कृष्ण को सुख देना की जो लालसा है और उनके सुख से राधा जी को जो सुख होता है, इसका कारण क्या है? कोई भी कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। प्रेम तो उनके बपौती चीज है, अपनी चीज है। प्रेम तो उनको है ही है, इसलिए स्वाभाविक रूप में उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए यह प्रेम कभी ध्वंस नहीं होता। इसलिए शुद्ध स्वरूप शक्ति की यह वृत्ति है। वहां पर कृष्ण को सुख देने की जो वृत्ति कामना है वो ऐसी है, जहाँ कृष्ण को थोड़ा सा सुख दिया उसे लाख कोटि गुण सुख उस व्यक्ति को मिलता है, स्वाभाविक रूप में, जो कृष्ण के सुख देने की लालसा होती है। अब इस चीज को प्रमाण करना है, क्या सुख जो साधारण है, जो काम जिसको कहते हैं, और प्रेम दोनों एक चीज नहीं है। इस प्रेम को आस्वादन करके राधा जी कैसे सुखी होती हैं, इस चीज को बतलाना है। इस चीज को यहां पर, यही तीसरा कारण है। अब उसके उदाहरण देने के लिए गोपियों को ले आते हैं। गोपी प्रेम, गोपी गणे प्रेम अधिरूढ़ भाव। जब गोपियों का ही प्रेम अधिरूढ़ भाव है तो राधा जी का क्या होगा? इसको तुलना देने के लिए, अब अधिरूढ़ किसको कहते हैं, इस चीज को हम लोग कल बतला करके तब फिर इस पर घटाएंगे। ये कैसा अधिरूढ़ है जो कृष्ण के अंदर में भी लोग पैदा कर दिए।